लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदाते एत एसुलताते की शुरुआत की है। यह संत पापा फ्रांसिस का तीसरा प्रेरितिक प्रबोधन है जो 9 अप्रैल 2018 को प्रकाशित हुआ था। यह हम सबों के लिए वर्तमान विश्व में पवित्रता हेतु एक निमंत्रण है। अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस हमारा ध्यान इस ओर केंद्रित कराना चाहते हैं कि हम वर्तमान परिवेश में जहां कहीं भी हैं, अपने में पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में कहा, हमें जिस किसी तरह की बुलाहट मिली है, हम चाहे जहां कहीं भी क्यों ना हो, हम उसी परिस्थिति में अपने कार्यों को उचित रूप में करते हुए पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि बपतिस्मा की कृपा पवित्रता के मार्ग में आपके जीवन को फलहित बनाए। आप सभी चीजों को ईश्वर के लिए खुला रखें। हम सभी बातों के लिए उनकी ओर अभिमुख हों। आप अपने में निराश ना हों, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से हम सबों को सक्षम बनाते हैं और अंततः हम पवित्रता को पवित्र आत्मा की कृपा स्वरूप अपने जीवन में पाते हैं। जब आपको अपने जीवन की कमजोरियों में पड़े रहने की परीक्षा आती है, वैसे घड़ी अपनी आंखों को आप क्रूसित यीशु की ओर उठाते हुए यह कहें, प्रभु मैं एक निरापापी व्यक्ति हूँ, लेकिन आश्चर्य के कार्य करते हुए आप मुझे थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। कलिसिया अपने में पवित्र है, यद्यपि यह पापियों से भरी हुई है, उसके बावजूद हम उन सारी चीजों को प्राप्त करते हैं जो हमें पवित्रता की ओर अग्रसर होने में मदद करती है। ईश्वर ने कलिसिया को विभिन्न तरह के उपहारों से विभूषित किया है, धर्म ग्रंथ, संस्कारों, पवित्र स्थलों, जीवित समुदायों, संतों का साक्ष्य और उनकी सुंदरता जो ईश्वर के प्रेम को प्रवाहित करती है, मानो एक दुल्हन आभूषणों से लदी हुई हो। श्रोताओ, यह पवित्रता है जिसके लिए ईश्वर ने आपको निमंत्रण दिया है। वह छोटे कार्यों के द्वारा विकसित होता है। यहाँ हमारे लिए एक उदाहरण है। एक नारी बाजार जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात अपने एक पड़ोसी से होती है और वे आपस में बातें करना शुरू करते हैं और इस भांति गप्पी का दौर शुरू होता है। लेकिन वह अपने हृदय में कहती है, नहीं, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करूंगी। यह पवित्रता के मार्ग में एक कदम है। बाद में अपने घर में उसके बच्चों में से एक उसे कुछ बातें करना चाहता है, जहां वह अपनी आशाओं और सपनों को बतलाने की चाह रखता है। और यद्यपि वह थकी मांदी है, वह धैर्य और प्रेम में बैठकर अपने बच्चे की बातों को सुनती है। संत पापा कहते हैं कि वह एक दूसरा त्याग है जो उसके जीवन में पवित्रता लेकर आती है। बाद में उसे कुछ चिंता होती है, लेकिन वह माता मरियम के प्रेम को याद करती है। वह अपना रोजरी लेती और विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगती है। यह पुनः पवित्रता का मार्ग प्रशस्त करता है। बाद में वह फिर गली में बाहर निकलती है, एक दरिद्र व्यक्ति से मिलती और उसके साथ करुणा भरी बातें करती है। यह पवित्रता में उसे और एक कदम आगे ले चलता है।
जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख रोटी के साथ।
श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, कभी कभी जीवन बड़ी चुनौतियों को लेकर आती है। उनके द्वारा ईश्वर हमें नए रूप में परिवर्तन हेतु निमंत्रण देते हैं, जिससे हम उनकी कृपा को प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में देख सकें, जिससे हम उनकी पवित्रता में सहभागी हो सकें। वहीं दूसरी परिस्थितियों में हमें चाहिए कि हम अपने कार्यों को, जिन्हें हम करते आ रहे हैं, उन्हें और भी अधिक श्रेष्ठतर रूप में करने के तरीके ढूंढें। कुछ ऐसी प्रेरणाएं हैं जो हमारे जीवन की साधारण चीजों को असाधारण तरीके से पूरा करने हेतु हमें प्रेरित करती हैं। जब कार्डिनल फ्रांचेस्को जेवियर येन वॉन थांग बंदीगृह में थे, तो उन्होंने अपने जीवन के समय को यह सोचकर प्रतीक्षा में बर्बाद करना स्वीकार नहीं किया कि वे किस दिन मुक्त किए जाएंगे। इसके बदले उन्होंने अपने जीवन को वर्तमान समय में जीने की सोची, उसे पूरी तरह से प्रेम से लबालब भरने की सोची। उन्होंने यह निर्णय लिया, मैं अपने हर रोज के जीवन के अवसरों का लाभ उठाऊंगा जो मेरे लिए आते हैं। मैं अपने जीवन के साधारण कार्यों को असाधारण रूप में करूंगा। श्रोताओं, इस भांति ईश्वरीय कृपा से संचालित होते हुए हम हर छोटी चीज के द्वारा अपनी पवित्रता में विकास करते हैं, जिसे ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है। पुरुषों और महिलाओं के रूप में हम अपने में पर्याप्त नहीं, बल्कि हम ईश्वर से मिले गुणों को एक सुयोग्य भंडारी की भांति दूसरों की सेवा हेतु उपयोग करते हैं। न्यूजीलैंड के धर्माध्यक्ष गण हमें सही रूप में इस बात की शिक्षा देते हैं कि हम ईश्वर के शर्तहीन प्रेम से दूसरों को प्रेम करने के योग्य बनते हैं, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु ने हमारे कमजोर जीवन में अपने शक्तिशाली जीवन को साझा किया है। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने हमें अपने प्रेम को एक बार सदा के लिए दिया है, जो हमसे कभी वापस नहीं लिया जाएगा। यह प्रेम हमारे लिए शर्तहीन और निष्ठावान है। उस तरह के प्रेम से दूसरों को प्रेम करना हमारे लिए सहज नहीं होता है, क्योंकि हम अपने में बहुधा बहुत कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यीशु ख्रीस्त की तरह ही प्रेम करना हमारे लिए यह प्रकट करता है कि ख्रीस्त हमारे संग अपने पुनर्जीवित जीवन को साझा करते हैं। इस भांति हमारा जीवन उनके कार्य करने की शक्ति को प्रकट करता है, चाहे वह हमारी मानवीय कमजोरी ही क्यों ना हो। श्रोताओं, एक ख्रिस्तीय पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़े बिना अपने प्रेरिताई कार्य के बारे में नहीं सोच सकता है, क्योंकि यह हमारे लिए ईश्वर की चाह है, जो हमारी पवित्रता है। हर एक संत अपने में प्रेरित कार्य का स्वरूप है, जो ईश्वर के विशेष क्षण में पिता की ओर से निर्धारित और सुनियोजित किया गया है, जो सुसमाचार की बातों को प्रसारित करने हेतु बुलाया गया है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदाते एत एसुलताते पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
ये जो है मेरा मन कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया सुन। चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार।
जो मिला जीवन मुझे और बस है तुझ मिला, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 12 अक्टूबर के ट्वीट संदेश में सिनड या धर्मदर्श धर्म सभा के उद्घाटन के बाद इस रास्ते पर किस तरह आगे बढ़ना है इसकी जानकारी दी। उन्होंने संदेश में लिखा, धर्मदर्श धर्म सभा में भाग लेने का अर्थ है अपने आप को उसी तरह रखना जिस तरह शब्द ने शरीर धारण किया या उनके पद चिन्हों पर चलना है। दूसरे लोगों के शब्दों के साथ ईश्वचन को एक साथ सुनना है। यह आश्चर्यजनक रूप से पहचानना है कि पौत्र आत्मा विस्मयकारी रूप में प्रवाहित होता और नए रास्तों एवं भाषाओं को सिखलाता है। एशियाई कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो ने 11 अक्टूबर को रेडियो वेरितास एशिया के RVA मोबाइल एप्लीकेशन जारी किए जाने के अवसर पर यांगून स्थित संत मरिया महागिरजा घर में धन्यवादी मिसा के दौरान कार्तिक स्टेशन को निमंत्रण दिया कि वह एशिया में मिशनरी बने। कार्डिनल ने कहा, RVA एशिया में सचमुच मिशनरी, एशियाई ख्रिस्तों की आवाज और जितने लोग इससे जुड़ते हैं उनके लिए आशीर्वाद बन सकता है। उन्होंने कहा, ईश्वर ने हमें एशिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना है ताकि इस विशाल महादेश की जनता और विश्व भर में रहने वाले एशियाई लोग हमारे मिशनरी समर्पण के द्वारा उन्हें सुन सकें। एशिया के लोग जो संस्कृति और धर्मों के धनी हैं, वे इससे सुन सकेंगे और ख्रिस्त के सच्चे चिन्ह को पहचान सकेंगे जो हमारे बीच रहते अपने वचन एवं संस्कारों से हमसे बातें करते हैं। अतः कार्डिनल बो ने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म सामाजियों और लोक धर्मियों को निमंत्रण दिया है कि वे इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें जो ईश प्रजा को सुसमाचार सुनने और उसे साझा करने में मदद देता है, साथ ही साथ उन्हें आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ने में भी मदद देता है। कार्डिनल ने संत पापा जॉन 23वें की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जिन्होंने रेडियो वेरितास एशिया की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने उन्हें शांति, आनंद और प्रेरितिक उत्साह के संदेशवाहक कहा। कार्डिनल ने प्रार्थना की कि हम उनसे प्रेरणा ले सकें तथा सुसमाचार प्रचार के बुलावे का पूर्ण रूप से प्रत्युत्तर देने हेतु अपने आप को समर्पित कर सकें। रेडियो वेरितास एशिया एक शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन है जो एशियाई कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के नेतृत्व में संचालित है। इसका एक प्राथमिक लक्ष्य हमेशा चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया और म्यांमार सहित कम्युनिस्ट एवं सैन्य शासित एशियाई देशों में आवाजहीन लोगों के लिए एक आकाशीय मंच प्रदान करना रहा है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 1981 में कार्यालय का दौरा किया था और स्टेशन को एशियाई ख्रिस्तों की आवाज कहा था, और 1995 में जब रेडियो वेरितास एशिया ने प्रसारण का 25वां साल मनाया तब पोप ने इसे एशिया का मिशनरी कहा था। रेडियो को 2017 में डिजिटल रूप दिया गया है जिससे साल में 1.6 मिलियन की बचत हो रही है। अमेरिका के कार्तिक धर्माध्यक्षों ने युवाओं को निमंत्रण दिया है कि वे पुर्तगाल के लिस्बन में 2023 में होने वाले 38वें विश्व युवा दिवस में भाग लें। 2023 में आयोजित आगामी विश्व युवा दिवस की आधिकारिक तिथि की घोषणा करते हुए धर्माध्यक्षों ने अमेरिकी युवाओं को निमंत्रण दिया है कि वे इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय समारोह में भाग लें। 4 अक्टूबर को लिस्बन के कार्डिनल मानुएल क्लेमेंट ने घोषणा की कि 38वां विश्व युवा दिवस 1 से 6 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि संत पापा फ्रांसिस इसके समापन समारोह में भाग लेंगे। एक बयान में अमेरिका के लोकधर्मी विवाह, पारिवारिक जीवन और युवाओं के लिए गठित कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष सल्वातोरे जे को दिएलो ने तथा धर्माध्यक्ष एडवर्ड जे बर्नर्स ने इस बात पर धर्माध्यक्षों के आनंद और उनकी आशा व्यक्त की है कि अमेरिका के कई युवा इसमें किसी न किसी रूप में भाग लेंगे। कहा गया है कि चाहे आप लिस्बन यात्रा की योजना बना सकते हैं अथवा डिजिटल मीडिया के माध्यम से भाग ले सकते हैं या देश भर के धर्म प्रांतों में होने वाले कई स्थानीय समारोहों में से एक में अपने साथियों के साथ शामिल हो सकते हैं। 12 अक्टूबर को स्पानी राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर तोलेदो के महाधर्म अध्यक्ष मोनसिनियर फ्रांचेस्को चेर्रो केव्स ने कचेरिस प्रांत स्थित ग्वादालूपे की माता मरियम के शाही मठ में समारोही क्रिस्ताक अर्पित किया। तोलेदो महाधर्म प्रांत की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन दिनों कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें से एक है ग्वादालूपे हिस्पानिया पुरस्कार, जिसको 9 अक्टूबर को प्रदान किया गया। 10 अक्टूबर को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसको डॉन फिलेमोन संकेज रूबियो को समर्पित किया गया था। उसी दिन महागिरजाघर में संगीत समारोह का भी आयोजन किया गया था। 11 अक्टूबर को इलस्ट्रेस पेर्देदोरिस शीर्षक की किताब का विमोचन किया गया और 12 अक्टूबर को मठ के सभागार में ग्वादालूपे की माता मरियम के शूरवीर का स्वागत किया गया तथा 1 बजे तोलेदो के महाधर्म अध्यक्ष द्वारा उनका अभिषेक किया गया। इटली के तोरेंटो में इताली कैथलिकों के 49वें सामाजिक सप्ताह का आयोजन 21 से 24 अक्टूबर को किया गया है, जिसकी विषय वस्तु है ग्रह जिसकी हम आशा करते हैं, पर्यावरण, कार्य, भविष्य, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सामाजिक सप्ताह का उद्देश्य है विभिन्न पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में एक ठोस योजना। इस दौरान अपुलिया शहर में 2 योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। पहला 50 वृक्षों को रोपना, जिसमें बच्चों के नाम अंकित होंगे जिनकी मृत्यु प्रदूषण से हुई है, तथा गहरा जाना योजना, जिसमें बेकार की वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जाएगा। इस योजना को 12 अक्टूबर को रोम के लुम्सा विश्वविद्यालय में तोरेंटो के महाधर्म अध्यक्ष एवं इटली के कार्तिक धर्म अध्यक्ष सम्मेलन के सामाजिक कार्य विभाग के अध्यक्ष मोनसिनियर फिलिपो संतोरो ने प्रस्तुत किया। सामाजिक सप्ताह में करीब 80 से अधिक धर्माध्यक्ष एवं 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें 208 धर्म प्रांतों के युवा विशेषज्ञ, राजनीतिक प्रतिनिधि, कलीसियाई नागरिक और सांस्कृतिक जगत के लोग भी शामिल होंगे, जो पारिस्थितिकी एवं अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कार्य, पर्यावरण संकट एवं सामाजिक संकट के बीच संबंध पर चर्चा करेंगे, जैसा कि लाउदातो सी में कहा गया है। अच्छे अभ्यासों के गहन अध्ययन के लिए भी जगह होगी और व्यवसाय, प्रशासनिक और पारिवारिक मोर्चे पर कुछ अच्छे मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे। इताली कैथलिकों की सभा टोरंटो के महागिरजाघर में मिसा के साथ समाप्त होगी, जिसकी अध्यक्षता धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल ग्वाल्टियरो बसेती करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।